अगर आप आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक ही पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदने चाहिए। अगर आप 20,000 रुपए की SIP डाल रहे हैं तो क्या आपने 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए या सिर्फ 3 या 4 में ही काम हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। अगर आप आपके पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7058248602। व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक्सटेंट कितना होना चाहिए। क्या आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स खरीद के ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। आइए समझते हैं सबसे पहली बात कि हम अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या मकसद होता है। मान लीजिए अगर मुझे 20,000 रुपये की SIP डालनी है तो सबसे पहले तो मैं मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले मैं मेरा खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करूँगा और मेरे गोल के हिसाब से मैं चुनूंगा मुझे कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में उतरना चाहिए। अगर मैं एक यंग इन्वेस्टर हूं तो हो सकता है मैं शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाऊं या फिर मैं सेक्टोरल इन्वेस्टिंग में जाऊं। अब अगर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां पर तो हम एग्जैक्ट केस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मान लीजिए अगर दो कैटेगरीज में हमने क्रैक डाउन कर लिया, एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमने जाना चाहिए समझ लीजिए, एक हम सेक्टोरल इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हैं, और 20,000 रुपये की हमारी वैल्यू है, मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है हमारा, तो हमने मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स है वो 4 खरीदने चाहिए मेरे हिसाब से। 2 आप वैल्यू के ले लीजिए, 2 आप सेक्टोरल के ले लीजिए, बस उसी में काम हो जाएगा। अगर आप 10 म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, मान लीजिए 5 आप वैल्यू के खरीदते हैं और 5 अगर आप सेक्टोरल के खरीदते हैं, तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 में से 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहेंगे जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट मतलब करंट सिचुएशन को सूट करने वाले पोर्टफोलियो जो है वो एग्जैक्ट करंट साइकिल के हिसाब से रहेगा, आपको सूट होने वाला रहेगा, आपके होराइजन को मैच करने वाला रहेगा, और बाकी के जो 3 हैं वो थोड़े अंडर परफॉर्मिंग रहेंगे, राइट? तो अगर आपने 5 ले लिया, मतलब आपने पूरा का पूरा दुकान ही खरीद लिया से समझ लीजिए आप, और अगर आप सारी चीज़ें ही खरीद लेंगे तो उसमें से ऑब्वियसली कोई चीज़ें बहुत अच्छा करेंगी, कोई चीज़ें अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन आपको हैंड पिक्ड सिर्फ अगर आप 2 लेते हैं जो बेस्ट सूट करेंगे आपको, तो वो आपके पोर्टफोलियो में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, राइट? और 5 खरीदने की ऐसी खास ज़रूरत भी नहीं है आपको। 5 यानी मैं एक कैटेगरी के 5 कर रहा हूँ, टोटल मिलाकर के 10। 20,000 को अगर आप 10 में डिवाइड करोगे, 2,000 रुपये एक में डालोगे, ऐसा करना कुछ हद तक सही नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों सही नहीं है, 10 में डालेंगे तो क्या होगा, अगर कुछ अच्छा करेंगे कुछ अच्छा नहीं करेंगे, ओवरऑल बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर बात आती है एडिशनल अल्फा क्रिएशन की। अगर आप 10 खरीद लेते हैं तो आप पूरा का पूरा मार्केट ही खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा आप, जैसे मैंने कहा, पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप कैसे खरीद पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप शॉप में जाते हैं, आपको शैम्पू खरीदना है, और अगर आप 5 अलग अलग प्रकार के शैम्पू खरीद के आ जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ किसी एक में तो वो इंग्रेडिएंट होगा जो मेरा हेयर फॉल रोक पाएगा, तो क्यों ना मैं 5 ट्राई कर लूँ एक ही बार में, तो वैसे नहीं होगा। आपने आपका जो रिसर्च है, स्टडी है, वो पहले किया हुआ होता है और आपको पता होता है कि आपने कौन सा शैम्पू खरीदना है। बस उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में भी ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए। ज़्यादा इमोशनल होकर के बस ये ना सोचिए कि हाँ मुझे म्यूचुअल फंड्स खरीदने, तो अलग अलग क्यों ना मैं लूँ। मुझे काफ़ी क्लाइंट्स, मतलब ये भी मिलते रिसेंटली, 5,000 रुपीज़ के SIP मेरे एक क्लाइंट को ओपन करनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 5 अलग अलग फंड में डालना है। मैंने जब पूछा क्यों, तो कहते कि डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक 1,000 के अलग अलग लेना है, और उसमें थोड़ा सा थ्रिल भी मिलता है इन्वेस्टर को। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड, मतलब 5 अलग अलग कंपनी के नाम, 5 अलग अलग डेटा पॉइंट्स जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं जब आप किसी से बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास में एक्सिस म्यूचुअल फंड है, मेरे पास में ICICI म्यूचुअल फंड है, मेरे पास DSP का है, मेरे पास फ्रैंकलिन का है, मेरे पास निपॉन का है, मेरे पास BOIXA का म्यूचुअल फंड है, मेरे पास मिरा एसेट का है, और ऑनलाइन में आप अगर जब भी सर्च करेंगे तो जो भी नाम आपको दिखेंगे, फिर चाहे वो नावी म्यूचुअल फंड हो, नए नए म्यूचुअल फंड, नावी म्यूचुअल फंड हो, या फिर सैमको म्यूचुअल फंड हो, तो आपको लगता है क्यों ना मैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लूँ, तो कितना फैसिनेटिंग दिखेगा मेरा पोर्टफोलियो, हर एक वो नाम जो है, अलग अलग नाम जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में मुझे दिखेंगे तो कितना अच्छा मुझे लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है, आपको हैंड पिक्ड म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करने हैं। फैंसी नेम्स देख के आपको ऑर्डर नहीं करना है, जैसे हम यूजुअली कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं खाना, राइट। मैं तो ऐसे ही ऑर्डर करता हूँ, मुझे तो खाने का ज़्यादा मतलब अपार्ट फ्रॉम कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ खास करके रेस्टोरेंट का, बिकॉज आई कुक माई सेल्फ एंड मैं घर में ही खाना बनाता हूँ। लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट व्हेन एवर आई गो टू अ रेस्टोरेंट विथ माई वाइफ, तो शी लाइक्स ऑर्डरिंग ऑल दैट स्टफ़ एंड व्हेन एवर शी आस्क्स मी, मैं चुनता हूँ वो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सा नाम हो, क्योंकि मुझे वैसे भी वो इंग्रेडिएंट समझते हैं नहीं, तो मैं नाम के ऊपर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि चलो ये खाते। चलिए टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे, लेकिन बात ये है कि आपको नाम के ऊपर में और बहुत सारा मिक्स करने के ऊपर में नहीं जाना है, आपको उसके टेक्निकल समझने हैं, आपको उसके फंडामेंटल समझने हैं। ये सारी चीज़ें आपके खुद के पोर्टफोलियो को मैच करने वाली होनी चाहिए, फिर उसमें आपका गोल, आपका होराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट, करंट मार्केट सिचुएशन, वो फंड में कौन से सेक्टर्स लिए गए हैं, कौन से स्टॉक्स लिए गए हैं, क्या वो फंड मैनेजर बुलिश है बैंक्स के ऊपर, क्या वो बुलिश है फार्मा के ऊपर में, किस सेक्टर के ऊपर, क्या वो आईटी के ऊपर बुलिश है, कौन सी चीज़ें उसने ज़्यादा लेकर के रखी है अपने पोर्टफोलियो में, ये सारी चीज़ें मैटर करती है और यही आपको बेस्ट रिटर्न्स देंगे और यहीं पर अल्फा क्रिएशन होगा। अल्फा क्रिएशन यानी जो इंडेक्स दे रहा है, जो सेंसेक्स निफ्टी और बाकी जो तमाम इंडेक्स है अलग अलग, जैसे मिड कैप का इंडेक्स है, स्मॉल कैप का इंडेक्स है, आईटी का इंडेक्स है, फार्मा का इंडेक्स है, ये इंडेक्स के ऊपर आप जितने रिटर्न्स कमाते हैं उसको कहा जाता है आप एडिशनल अल्फा कमा रहे हैं या अल्फा क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अल्फा क्रिएट कब होगा, जब आप वो हैंड पिक्ड चीज चुनेंगे जो कि ऊपर जाएगी, ना कि सारी की सारी चीजें जो आपको हो सकता है इंडेक्स के नीचे के रिटर्न्स दें। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसे होगा कि मैं बस 20,000 रुपए को चार ही या तीन ही म्यूचुअल फंड में डाल दूं और वो मेरे तीन चार म्यूचुअल फंड जो है वही काम कर लेंगे, हो सकता है वो तीन चारों नीचे चले जाए। बात तो सही है, लेकिन यहीं पर काम आते हैं एक्सपर्ट्स की राय, वहीं पर काम आते हैं एडवाइजर्स, वहीं पर काम आता है आपका एक्सपर्टीज। अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, एक्सपर्ट डिसीजन लेंगे, तो आपको हैंडपिक्ड और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आपके खुद के पोर्टफोलियो के लिए चुन के मिलेंगे, और ना जो कि आपको अल्फा क्रिएट करवा के देंगे, ना कि बेंचमार्क से नीचे के रिटर्न्स देंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सिलेक्टेड चीज़ें ही ऑर्डर करें, जो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, यानी सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स ही लें जो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो मैं तो कभी भी मेरे क्लाइंट्स को, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि एक तो एक जैसे मैंने कहा एक थिंकिंग इस प्रकार की होती है कि मेरे पास सब है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास वो भी है, वो एक फीलिंग आ जाती है। और दूसरा उनको लगता है, क्योंकि एक हेजिटेंसी होती है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनको लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें ले लूँगा तो शायद एवरेज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, कुछ अच्छा करेंगे कुछ अच्छा नहीं करेंगे। बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन करना भी गलत है। 20,000 रुपये की SIP है और आपने सोचा कि मैं एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दूँ, या 15,000 का एक डाल दूँ, 5,000 का एक डाल दूँ, तो थोड़ा गलत है। 10,000 के भी दो डालते हैं तो सही है, कुछ हद तक सही है। 10,000 के भी अगर आप दो डालते हैं, हाँ फिर वहाँ पर मैटर करेगा कि आप सिलेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप 7,000 के तीन भी डालते हैं तो भी सही है, या फिर 5,000 के डालते हैं। लेकिन अगर आप 3,000 रुपए के पाँच, मतलब 6 से ज़्यादा डाल देंगे, तो फिर से वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। यही चीज़ अप्लाई करती है बाकी सारे अमाउंट्स के लिए भी। 10,000 की SIP हो, 50,000 रुपये की SIP हो, 1,50,000 रुपये की SIP हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही प्रॉम्प्ट रखना है, बहुत ही मतलब आपके पोर्टफोलियो को मैच करने वाला डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना है। ज़्यादा का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक म्यूचुअल फंड में करीबन 50-60-70-80 स्टॉक्स ले जाते हैं, तो वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है मेरे दोस्तों, है ना। आप ऑलरेडी इतने सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप करवा रहे हैं अपने पैसों से, तो फिर ऑलरेडी आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप फिर से उसको डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। और 5,000 रुपये को तो 1,000 रुपये में बिल्कुल भी ना करें, ये तो कोई भी आपको एडवाइस नहीं करेगा। दोस्तों ये था इस एपिसोड में, हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो जो है उसका चर्निंग करना है, उसको एक रिव्यू करना है, आपको पता करना है कि क्या आप सही ट्रैक पे हैं, आपके पर्सनल गोल्स, आपका एज, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका होराइजन, इन सब चीज़ों के ऊपर में बेस्ड होती हैं सारी चीज़ें, साथ ही में करंट मार्केट साइकिल कौन सा चल रहा है, कौन सा मार्केट कैप आपने खरीदना चाहिए, कहाँ पर आपने रहना चाहिए, डेट साइड, इक्विटी साइड, लिक्विड फंड्स, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में राय चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7058248602 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की यहीं पर डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में इंग्लिश का हमारा पॉडकास्ट है, उसको भी रेफर ज़रूर कीजिए। इंग्लिश का पॉडकास्ट इंडिया के सारे फाइनेंस पॉडकास्ट में रैंक नंबर 12 पे है अकॉर्डिंग टू द फीड पोस्ट ब्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। साथ ही में हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, जो कि बहुत ही शानदार कोर्स है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो वो अवेलेबल है फिन आज़ाद के ऐप में। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द मिलूंगा आपसे। थैंक यू।